دل کی دوات میں قلم ڈبو کر بابا تجھے ایک خط لکھتا ہوں، یادیں جگر کی سیاہی لے کر حال دل سب سچ لکھتا ہوں، بابا تجھے ایک خط لکھتا ہوں۔ شام سویرے یاد میں تیرے بیتے دن اور بیتے رہنا، تیرے خیال کو ہی دیکھے یہ میرے نینا، لگتا ہے بابا ہاتھوں میں تیرے ہاتھ صدا دے کر چلتا ہوں،
دل کی دوات میں قلم ڈبو کر
بابا تجھے ایک خط لکھتا ہوں۔ من میں بسی ہے مورت تیری، دل میں ہے تیری تصویر، پرم دھام سے آ کر بابا بنا رہے سب کی تقدیر، خط کا سار یہی ہے بابا سمکھ ملنے کو لکھتا ہوں، تجھے ایک خط لکھتا ہوں۔
یاد جگر کی سیاہی لے کر
حال دل سب سچ لکھتا ہوں، خط لکھتا
شانتی۔ تو ابھی ہمارے بیچ میں وراجمان ہے ہمارے آدرنیا راج یوگی بھراتا ستیش بھائی جی، ایک ہاتھ ہلا کر ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں، ستکار کرتے ہیں، ابھینندن کرتے ہیں۔ آپ بالیہ کال سے ہی اس ایشوریہ گیان مارگ پر چلتے ہیں، پریوار میں مات پتا سہیت بھائی بہن سبھی گیان میں چلتے ہیں۔ اتر پردیش کی دھرنی سے آپ نکلے ہیں اور 1980 سے آپ نے اپنے سمرپت جیون کی یاترا آرمبھ کی ہے۔ مدھوبن میں یوں تو آئے 78 میں تھے پر سمرپت جیون کی یاترا 80 سے آرمبھ کی ہے، تب سے لے کر آج دن تک آپ مدھوبن میں رہ کر اپنی سیوائیں دے رہے ہیں اور مدھوبن کے ہر پروگرام میں آپ کے گیتوں کی دھنی گونجتی رہتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی پرکار کا پروگرام ہو، آپ کے گیتوں کے بنا وہ پروگرام پھیکا سا لگتا ہے، ادھورا سا لگتا ہے۔ تو بھگوان نے آپ کو بہت سندر کلا دی ہے کہ آپ بہت اچھا لکھتے ہیں، گاتے ہیں، کوی ہیں، لیکھک ہیں، لیکچرر ہیں، क्या क्या नहीं विशेषताएं भगवान ने आपको दी है। और बाबा तो कहते हैं कि ये कल्प 5000 वर्ष का है, और उस 5000 वर्ष के कल्प में ये छोटा सा संगम युग है, और इस छोटे से संगम युग में आपने 5000 से भी अधिक गीतों की रचना कर डाली है, और 500 से भी अधिक गीतों को जो आपने लिखे हैं बड़े बड़े गायकों ने स्वर दिया है। आरंभ में आप मधुबन में हमारे जो सीनियर से दादियां, सीनियर दादाएं, सीनियर भाई बहनें, उनके लिए ब्रह्मा भोजन बनाते रहे 30 वर्षों तक, और फिर पिछले कुछ समय से हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट विंग्स है उसमें एक है कला एवं संस्कृति विंग, उसमें आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और साथ साथ आपकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के साथ आप पूरे भारत भर में भ्रमण करते हैं और गीतों के माध्यम से भी सेवा करते हैं, तो ज्ञान योग की भट्टियां करा के भी सेवा करते हैं। तो आज हमें बताएंगे कि हम भगवान को खत कैसे लिखें, हाँ, कि भगवान हमारे खत का जवाब भी दे हमें, है ना। तो हम सुनते हैं भ्राता जी से। नवरंगपुर की कोई बहन है यहाँ पर, माता कोई नवरंगपुर से, माता या बहन कोई कोई नहीं, नवरंगपुरा, नवरंगपुरा से कोई माता या बहन बैठी है यहाँ पर।
विशालपुर में 14 नंबर में रात को दो बहनें ठहरी थी, वो कोई कौन है रात उठा।
जो विशाल भवन रूम नंबर 14 में रात को दो बहनें ठहरी थी, अगर इस हॉल में है तो जरा हाथ खड़ा करें। विशाल भवन, हाँ वो देखो दो,
थोड़ा सा एक मिनट बाहर।
विशाल भवन रूम नंबर 14, उसमें जो दो बहनें ठहरी है थोड़ा बाहर जाएंगे, चंद्रशेखर भाई आपसे मिलेंगे। तो अभी हम सुनते हैं, हाँ, कैसे हम भगवान को खत लिखे। सबका पेपर पेन रेडी है, तो चलिए हम सुनते हैं भ्राता जी से।
ओम शांति। सबसे पहले आप सबको मधुबन में आने का, और वो भी पांडव भवन में आने का, संसार की सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम जगह पर आने की, और जहां पर आने का सबका मन लालायित रहता है वहां पहुंचने की, और कृष्ण जन्माष्टमी की, रक्षाबंधन की, एक साथ ही बहुत ढेर सारी आपको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल वाले बाबा, दिल वाले बच्चे, दिल का लिखा तुम्हें खत भेजते। दिल वाले बाबा, दिल वाले बच्चे, दिल का लिखा तुम्हें खत भेजते हैं। मजमून खत का ओ बाबा इतना, साकार दिन वो नहीं भूलते हैं। दिल का लिखा तुम्हें खत भेजते हैं। अमृत वेले आंगन में देते, दृष्टि वो लेती बच्चों की टोली, खेल भी खेले झूले भी झूले, हमसे ही की क्यों आंख मिचोली। दिन वो सुनहरे संग वो रुपहले, यादों के पर्दे पे हम देखते हैं, दिल का लिखा तुम्हें खत भेजते हैं। दिलवाले बाबा दिलवाले बच्चे, दिल का लिखा तुम्हें खत भेजते हैं, दिल का लिखा तुम्हें खत भेजते हैं। बगिया में देखा फूलों से हंसते, पहुंचे वहां तो जाने कहां छुप जाते। कुटिया में देखा खत प्यारे लिखते, पहुंचे वहां तो जाने कहां छुप जाते। खत में लिखा है ओ मधुबन के बाबा, खत में लिखा है मधुबन के बाबा, मधुबन में बच्चे तुम्हें ढूंढते हैं, दिल का लिखा तुम्हें खत भेजते हैं। दिलवाले बाबा दिलवाले बच्चे, दिल का लिखा तुम्हें खत भेजते हैं, दिल का लिखा तुम्हें खत भेजते हैं। हम हैं पाते बेहद मुहब्बत, पर दिल में हर दम इतनी शिकायत। हम हैं पाते बेहद मुहब्बत, पर दिल में हर दम इतनी शिकायत। किसके लिए तो रहे साकार में अंग संग, अपने लिए क्यों ऐसी है हालत। कह कर के ड्रामा मुस्का रहे हो, कह कर के ड्रामा मुस्का रहे हो, तुमको वतन में हम देख ते हैं, दिल का लिखा तुम्हें खत भेजते हैं। दिलवाले बाबा दिलवाले बच्चे, दिल का लिखा तुम्हें खत भेजते हैं। मजमून खत का ओ बाबा इतना, साकार दिन वो नहीं भूलते हैं, दिल का लिखा तुम्हें खत भेजते हैं, दिल का लिखा तुम्हें खत भेजते हैं। हम सब बाबा की प्यार में पलने वाले, ईश्वरीय स्मृति में समाने वाले, निरंतर बाबा को अपने दिल में समाते हुए सारी बाधाओं को पार करके बढ़ने वाले और अपना संपूर्ण तन मन धन प्यारे बाबा को सौंप करके उसके हवाले रहने वाले, हर पल कदम कदम पर उसकी मदद का अनुभव करने वाले, हम वो कल्प कल्प के अत्यंत सिकी लधे बहुत प्यारे प्यारे बाबा के लक्की मोस्ट बच्चे हैं, लक्की मोस्ट लकीएस्ट हैं। सब लकी, सब लकी हैं, सभी लकी हैं, लकी हैं तभी तो यहीं पर है, तो आप सब बहुत लकीस्ट हैं। और यही हमारे दिल का स्नेह पत्र के रूप में सामने आता है। पहले के जमाने में जब मोबाइल नहीं था तो एक पत्र लिखने का जो माध्यम होता था तो वो कागज और कलम होता था, उससे लिखते थे, एड्रेस पे लिखते थे, और एड्रेस नहीं होता तो पहुंचा देते थे और पत्र लिखते थे। आजकल तो लिखने की वो प्रथा बंद हो गई है, हैं? अब तो सब सीधा ही यहां से सोशल मीडिया है, उसके द्वारा सहज हो जाता है। फिर भी कहा गया है कि कैसे बाबा को खत लिखें, तो उसके ऊपर थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि बाबा बच्चों को बहुत पत्र लिखते थे। जो बाबा के समय के बच्चे थे उन सब का अनुभव है कि बाबा के लाल अक्षरों में लिखे हुए, सिंधी में बाबा लिखते थे ऐसे, इधर से इधर, उर्दू जैसे होता है, बाबा लिखते थे और ऊपर से यीशु दादी ब्लू पेन से लिखती थी, लिख करके वो खत भेजा करती थी। बाबा जो है दिन भर में इतने पत्र लिखते थे, बहुत पत्र लिखा करते थे। और सबको पता है कि जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए उस दिन दादी ने कहा कि बाबा बहुत पत्र हो गए हैं, अब बस कीजिए। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, आज सब बच्चों को पत्र लिखना है, सब बच्चों को पत्र लिखना है, कोई बच्चा रह ना जाए। किसको क्या पता था कि बाबा किसी का उलाहना नहीं चाहते। 45 पत्र लिखे और बाबा पत्र लिखे और लिख करके ही रहे, ऐसी स्थिति में जबकि तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, तो पत्र लिखा। और बाबा के जो अनन्य बच्चे थे, दादी प्रकाशमणि कहती हैं कि वो गाम देवी सेंटर पर रहती थी, बाबा को एक दिन भी अगर पत्र ना गया तो बाबा का फोन आना शुरू हो जाए, बच्ची क्यों, क्या हुआ, आज पत्र नहीं आया। और कोई बच्चों का अगर पत्र नहीं आता था बाबा के पास तो बाबा कहते थे, बच्चे क्या हुआ, बीमार तो नहीं हो गए, कुछ माया के रंग तो नहीं लग गया, कहीं कुछ हो गया बच्चों, कुछ हो तो नहीं गया। बाबा को बेचैनी हो जाती थी, बच्चों का पत्र नहीं आया, एक दिन पत्र नहीं आया तो बाबा को बेचैनी हो जाती थी कि बच्चों के पत्र नहीं आए। ये था बाबा का प्यार और बाबा के अनन्य बच्चों का प्यार। अब हम भी तो हैं बाबा के उन बच्चों में, आपको शुरू में बताया, तो आप में से कौन है जो बाबा को रोज पत्र लिखते हैं, जो रोज लिखते हैं, जो रोज लिखते हैं, जरा उठ जाए तो बहुत अच्छा, दो तीन ही है, रमन भाई और ये सब लगता है उनके साथ में। अच्छा, क्या बात, धन्यवाद, वेरी गुड, ठीक है, इनके लिए ताली तो बजा दो। इनके लिए ताली क्यों बजवा रहा हूं, ये आपको अपने लिए बजवा रहा हूं ताकि आज से आप उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें, है ना। मुझे भी मेरा अनुभव है कि विशाल भवन की छत तब नहीं थी और प्रारंभिक दिन थे 78, लगभग 80, 82, 83 उसके आसपास के दिन थे। तो मैंने आते ही अनुभव किया कि यदि हमको आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ करना है, तो कुछ करना पड़ेगा। मन में बड़ा अफसोस था कि 40 वर्ष हो गए दादियों को आए हुए और मैं दादियों के आए हुए 40 वर्ष के बाद आया। अब मेरे अंदर कुछ तो गुण है नहीं, तब तो कुछ पता भी नहीं था ईश्वरीय परिवार का, मधुबन में आए थे, नए नए थे, सेवा में करते थे, अभी तो पुरुषार्थ की कोई ज्यादा वो थी भी नहीं, उमंग बहुत था लेकिन कोई परिचय नहीं था कि कैसे होगा, कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता था। तो दिन में सेवा करते थे भोजन निर्माण की और रात को सोचते थे कि टाइम तो मिला नहीं, पुरुषार्थ अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो दिन भर सेवा और रात को सोऊं कैसे, नींद आए नहीं, जबकि थका मांदा बहुत, और नींद आए भी तो आए कैसे नींद कर लूं। अंदर में कुतूहल था, जिज्ञासा थी, कुछ करने की ललक थी, उत्कट उत्कंठा थी, आगे बढ़ने की अभिलाषा थी, कुछ करने की मन में तमन्ना थी, कुछ जज्बा था, कुछ जज्बाती थे, कुछ जोश था, कुछ जुनून था कि मुझे कुछ करना है। तो रात को छत पे घूम रहे हैं, ऊपर से भी बारिश हो रही है, ऐसे जैसे बारिश अभी थोड़ी देर पहले झीनी झीनी होती थी, और इधर ये भी बारिश होती थी। सामने देखा विशाल भवन की छत पे, और देख रहा हूं, एक दिन का किस्सा सुना रहा हूं, सामने देख रहा हूं ऊंची पहाड़ी पर। मैं कहता हूं कि बाबा कहां पर हो, तो ब्रह्मा बाबा, बाबा बाप दादा, देखता हूं बाबा एक बहुत बड़े विशाल पूरे बाबा का शरीर दिखाई पड़ता है, बाबा दिखाई पड़ते हैं, और बाबा इतने में झुकते हैं घुटने के बल, और बीच में देखता हूं कि वो पहाड़ी जो नक्की झील के ऊपर वाली पहाड़ी है दिखाई पड़ती, और वहां और ये विशाल भवन, और दोनों के बीच में तो गैप है। तो मैं कहूं कि बाबा आप वहां पहाड़ी पर और मैं यहां पर हूं, बीच में इतनी खाई है, मैं आपके पास तक कैसे पहुंचूं, आप ही कुछ करो बाबा। और बाबा को कह रहा हूं, इतने बाबा झुकते हैं घुटने के बल बैठते हैं और अपना लंबा हाथ बढ़ाते हैं, वो बड़ा लंबा हाथ, और उस लंबे हाथ में मैं छोटा सा जैसे कि इस उंगली जैसे यहां चढ़ करके चढ़ रहा हूं, और बाबा के गले में गोद में आया हूं, और बाबा मुझे खूब प्यार कर रहे हैं। ये दृश्य रात को 1 बजे देख रहा हूं, 1 बजे आता हूं और आके अपनी डायरी नोट करता हूं, और डायरी में लिखता हूं कि बाबा मैं क्या करूं, कैसे आप तक आऊं, ये तो आप ही कुछ ले सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, और बाबा आपके तो बड़े उपकार हैं। मैं सोचता हूं कि क्या करूं, मैं आपको तो सारे प्यार करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको कौन सा प्यार करूं कि जो आपकी नजर मेरे ऊपर पड़े, केवल और केवल आपका प्यार मेरे लिए हो, जैसे हर गोपी चाहती थी कि मेरा प्यार श्री कृष्ण के लिए और श्री कृष्ण मुझे ही प्यार करें, वैसे ही मेरी अभिचारी प्यार, दिल का प्यार उमड़ रहा था। तो लिख रहा हूं कि बाबा चल तो पड़ा हूं, आपके पास आ गया हूं, मेरा क्या होगा, क्या करूं मैं आगे बढ़ूं। तो उसमें डायरी में नोट करता हूं, और बचपन में एक कविता पढ़ता था, जो निकलकर बादलों की गोद से थी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह मैं घर छोड़ कर यूं क्यों करी। उसमें लिखा है, दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, चू पड़ूंगी या अंगारे पर किसी, गिर पड़ूंगी या कमल के फूल में। मैं अच्छी खासी बादलों की गोद में बैठी थी बूंद, ये मेरे को क्या हुआ, मैं बाहर निकल आई, मैं तवे पे गिर जाऊंगी, आग में गिरूंगी, धूल में मिलूंगी, कहां जाऊंगी, भगवान मेरा क्या भाग्य है, मेरा क्या होने वाला है, ये मैं कह क्यों निकल पड़ी। और वो विनती कर रहे थे भगवान से कि प्रभु ये मैं क्या कर रही हूं, मैंने क्या किया, आराम से बैठी थी बादलों की गोद से, निकली क्यों मैं, पश्चाताप भी हो रहा है और ये भी हो रहा है कि मैं निकली क्यों। इतने में कवि लिखता है कि उसी समय बह चली एक ऐसी हवा कि सागर के पास किनारे पर एक सीप उसका मुंह खुला था, बह चली उस ओर एक ऐसी हवा, वो गई एक सीप का था मुंह खुला, वो उसी में जा पड़ी मोती बनी, वो उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो अक्सर करके हमारे मन में कुतूहल होता है, बाबा मेरा तो योग लगता नहीं है, मेरा तो ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, हमारे पास अंदर अंदर बड़ी कुलबुलाहट होती है, अच्छी है, होना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ नहीं मिलता है तो बड़ी मन में असंतोष की ज्वाला भी होती है। ये जो होना चाहिए, धधकना चाहिए, ये जागृत होना चाहिए, तब कहीं जाकर के हम उस मंजिल पर पहुंच पाते हैं। तो मैं आकर के लिख रहा हूं और वो गीत के आगे निकलता है,
उपकार तुम्हारा बाबा किन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं, उपकार तुम्हारा बाबा।
ये शब्द, ये लाइन, ये पहला गीत, ये गीतों की 55,000 गीतों का वो पहला गाना बनता है, उसी समय लिखता हूं। तो आंसू भी जी, बिल्कुल स्मृति पुष्प का पहला गीत, तो उसमें ये आंसू निकलते हैं, पेपर भीग रहे हैं, और उसी समय संकल्प लेता हूं कि अब कुछ करना है। फिर मैंने 5-6 डायरियों का निर्माण किया। एक डायरी लिखा पत्र बाबा के नाम, एक डायरी लिखा जरा सोचो, एक डायरी में बाबा के पॉइंट्स, एक डायरी में पॉइंट्स के बाद मुरली सुनने के बाद लिखता था आज बाबा ने क्या कहा, उसका एक्सप्लेनेशन करता था, बातचीत रूढ़ियान करता था। एक डायरी में लेख के कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखने के लिए, पॉइंट्स नोट करने के लिए डायरी बनाई। एक डायरी गीतों की बनाई, एक डायरी कविता की बनाई, एक डायरी चार्ट की बनाई। कितनी बनाई होगी? ढेर सारे। उसी समय मैंने ठान लिया कि कुछ करना है तो कुछ करना है, कुछ पाना है तो कुछ करना है। और वो दिन और आज के दिन मैं सारा श्रेय देता हूं उस पत्र लेखन को, उस चार्ट लेखन को, पॉइंट्स के लेखन को। वो जो लेखन कार्य करता था उसी से जुट गया और उसने आज इतनी मदद की कि जो तमाम लेख लिखना, क्लासेस कराने या जो भी मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूं उसका एक परिणाम है। हमारे कई भाई बहने लिखने में बड़े आलस से करते हैं, भले ही मोबाइल का जमाना है लेकिन लिखने का मजा और ही कुछ और है। कलम लेकर और कागज उठाएं और उसको लिखें। तो मैं समझता हूं इस अनुभव से आज से आप संकल्प करेंगे कि अब हम जरूर बाबा को खत लिखेंगे। और हर एक भाई बहन, आज से भले बुजुर्ग हो गए हों लेकिन हमारे यहां कोई बुजुर्ग होता ही नहीं है ना, कोई बुजुर्ग नहीं है ना, कोई बुजुर्ग समझता है अपने पास? हमारी दादियों ने समझा नहीं, जो 104 साल की थी उन्होंने भी नहीं समझा, बाबा 93 के हो गए तब भी नहीं अपने को बूढ़ा कहते थे हैं? लेकिन हमारे में से कई भाई बहने समझ लेते हैं, लेकिन समझिए नहीं, ये समझिए कि अब हमारी नई यात्रा शुरू हो गई। ठीक है, नई यात्रा शुरू हुई और नई यात्रा के साथ अपने जीवन की शुरुआत कर लें। आज से संकल्पबद्ध हों कि बाबा को लिखना है। बाबा तो रोज हमें पत्र दो लिखते हैं, दो पत्र लिखते हैं। कौन सा पत्र जानते हैं ना? एक पत्र तो बाबा रोज लिखते हैं, पत्र मुरली के रूप में, वो जो 3-4 पेज का पत्र होता है। पहले तो बड़ा पत्र होता था, लंबा लंबा था और खूब भरा हुआ होता था, अब तो कम हो गया। अब आप जो है इतना तो खत लिख नहीं पाएंगे रोज, तो आप क्या करेंगे? प्यार तो है, वो आपको पत्र लिखता है, सबको अनुभव है ना पत्र लिखने का, लव लेटर लिखने का, सबने लिखा होगा ना। अब उसको ट्रांसफर कीजिए, अब बाबा को पत्र लिखिए, और वो पत्र दिल का होना चाहिए, अंतरात्मा की होनी चाहिए। जो जितना जिगर से प्यार से पत्र लिखेगा वो पत्र बाबा तक पहुंचेगा जरूर। पत्र लिखने के लिए अलग कागज में लिखने की आवश्यकता नहीं है कि आज लिखो और पत्र फाड़ करके फेंक दिया, नहीं। एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए, आज भी मेरे पास संकलन है, मेरे पास बहुत डायरियां, वो शुरू शुरू की भी, अभी तक भी कहीं भी फेंक नहीं पाता हूं क्योंकि उनमें बीच बीच में बहुत अच्छे अच्छे गीतों की कुछ लाइनें लिखी, अगर मैं फिर से दोहराऊं तो पता नहीं कितने गीत बन जाए। तो वो जो चीजें आपके पास हमेशा होना चाहिए, ताकि आप देखें कि बाबा से रूरियान करते रहे हैं कि समय की क्या फीलिंग थी, उन दिनों की फीलिंग क्या थी और आज क्या फीलिंग है। क्योंकि मेरा बाबा तो हम तब भी कहते हैं जब शुरू में आए, और मेरा बाबा अभी भी कह रहे हैं, लेकिन तब में और अब में, आज के 40 साल पहले जो मेरा बाबा कहता था और 40 साल के बाद आज जो कह रहा हूं, कितने ठोकरें खाए, कितनों को मेरा मेरा कहा, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ, ठोकर लगी, तब असली मेरे पे पहुंचे। वो कहते हैं हारे को हरिनाम, जब दुनिया से लोग हार जाते हैं तब भगवान की शरण में आते हैं। तो पहले तो मेरा कहते थे उमंग में, जोश में, जज्बे में, लेकिन पता नहीं मेरे कितने थे उस समय, और अब दिल से कहते हैं बाबा देख लिया हमने जग सारा, एक तू ही है अपना प्यारा। अब देखते हैं बाबा तू ही है हमारा, एक दूसरा कोई और नहीं। तो बाबा को ये प्यार करने की एक विधि है। बाबा हमें बहुत प्यार करते हैं और हम भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार की कोई हमारे पास कुछ सबूत नहीं है, कोई निशानी नहीं। आप प्यार करते भी हैं कि नहीं करते हैं? ऊपर से कह रहे बाबा मैं आपको बहुत प्यार करती हूं, बाबा कहते हैं हां बच्ची मैं जानता हूं, मैं चार पेज के लिखता हूं, तुम चार लाइन भी नहीं लिखती हो, यही प्यार है क्या? है? तो प्यार का जवाब दे, लिख करके दे, जीवंत होके दे। आपको ना लिखना पढ़ना आता हो, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, कोई बात नहीं, शुरू तो करो, पेन उठाओ, आप लिखेंगे उसके पहले बाबा तक पहुंचेगा और उसका रिस्पॉन्ड देगा, जरूर देगा। प्यार का ऐसा पत्र होना चाहिए कि प्रेम के आंसू है। वो भाई बहने जो याद में बैठते हैं और नींद आती है, उनके लिए ये पत्र लेखन संजीवनी बूटी। जब पत्र लिखें तो प्रेम के आंसू आए, नींद ना आए, नींद उड़ जाए। हमारा प्यार बाबा के प्रति तब तक सत्य नहीं है, सच्चा नहीं है, जब तक हम दिल से, जिगर से अपनी बात को बाबा को कह नहीं देते। ये कहना चाहिए। और मैं महसूस करता हूं कि जब आप लिखेंगे तो आपका असली प्यार निकलेगा। आप कहेंगे क्या लिखूं, ये तो सिखाया नहीं जाता है। आपने जब पहला पत्र लिखा होगा किसी को, तो आपको किसी ने सिखाया क्या आपको? मैं बताऊं ऐसा ऐसा पत्र लिखो सब हंस रहे हैं अंदर अंदर। तो ये मैं सिखाऊं कि आपको क्या लिखना है, ये सिखाने वाली चीज नहीं है। जैसे एक चरवाहा, वो कहीं पर मई जून के दिन थे, धूप का, बहुत बड़े चारागाह में चरा रहा था, गाय वाय सब छोड़ दिया, धूप बहुत तेज थी, वो तो छाया के पेड़ के नीचे बैठा था और जानवर चरने में बिजी थे। उसके मन में आया कि देखो मैंने सारे जानवरों को छोड़ दिया है, चारागाह में सब चर रहे हैं और मैं आराम से बैठा हूं। भगवान भी ऐसे हम सबको इस दुनिया के चारागाह में छोड़ दिया, जाओ तुम चरो, और वो भी कहीं बैठा होगा अकेले, वो भी अकेले बैठा है, मैं भी अकेले बैठा हूं। तो कहता है भगवान जी तुम अकेले बैठे हो, आ जाओ ना मेरे साथ, मेरे साथ आओ बैठो, थोड़ा बात करो, अकेले बैठे बैठे उब गए होगे, आ जाओ। तो आ गया, दोनों बैठ के बड़ी बात किए, उसको बहुत खुशी हुई, भगवान तो उसी की भाषा में बात करता है। दोनों ने ऐसे प्यार से बात किया कि बड़ा आनंद आ गया। और वहीं देखा एक कोई व्यक्ति गया, बड़े मुश्किल कोई पुजारी पीछे से गुजरा, तो देखता है ये बड़बड़ कर रहा है, इसके आगे तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो जाके पूछता है तुम क्या कर रहे हो? कहते हो मैं भगवान से बात कर रहा हूं उसके थोड़ी देर के लिए। कहते भगवान से बात ऐसे थोड़े होता है, भगवान से बात करना चाहते हो? कहते हाँ मैं करता हूं, करना चाहता हूं तो करूंगा भी। तो कहता आओ तुमको मैं सिखाऊं। वो पुजारी दो श्लोक उसको सिखाना शुरू कर दिया। वो बेचारा चरवाहा, उसको तो अनपढ़, पढ़ा तो था ही नहीं, बड़ा मुश्किल से बहुत देर तक लगाया पंडित ने, पुजारी ने उसको सिखा तो दिया, बड़े मुश्किल सिखाया और कहा इसको रटना और इसको जब करोगे तो भगवान से बात होती रहेगी। अब उधर तो चला गया, और जब पुजारी गया मंदिर में और भगवान की मूर्ति क्या कहता है, आज मैंने बड़ा पुण्य का काम किया, आपके एक अनपढ़ को, एक चरवाहे को मैंने आपको मिलने बात करने का एक ढंग सिखाया, तो अंदर से आवाज आई, अरे तूने तो सत्यानाश कर दिया, मेरा एक दोस्त उसने बड़े प्यार से बुलाया, मैं बात कर रहा था, तू कहां से पहुंच गया, सारा काम गुड़ गोबर कर दिया तुमने तो, बाकी हमारी, तुम जल्दी जाओ वापस और उसको कहो कि भाई ये सब भूल जाओ, तुम इसके चक्कर में मत जाओ, तुमको हमने गलत फहमी में डाल दिया, उससे माफी मांगना और कहना जैसे तुम बात करते थे वैसे बात करो, अरे मेरा मेरे इस बात वो छोड़ करके वो श्लोक रटने में लगा हुआ बेचारा, जाओ जल्दी जाओ। तो ये होता है प्यार करने के लिए, पत्र लिखने के लिए कुछ सीखना नहीं, वो दिल की चीजें, आप लिखिए प्यार से और जो लिखेंगे वो बाबा तक पहुंचेगा, फिर आप उसमें अलग अलग लिख सकते हैं। मैं दादी प्रकाशमणि को चार्ट तो मैं 45-50 साल हो गए लिखते हुए और आज भी चार्ट लिखता हूं, ये हमारे इसमें बायोडाटा में ये सब नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं आपको 2-3 चीजें अलग बताऊं। ये वही गद्दी है, ओम शांति की गद्दी है, हिस्ट्री हॉल की गद्दी है, जहां पर पिछले 40 साल से मैं योग कराता हूं, योग करता भी हूं कराता भी हूं, यहां जब रहता हूं मधुबन में तो यहां सवेरे आपको अमृत बेला मिलता हूं, और 40 वर्ष में योग कभी मिस न करने का संकल्प वो पूरा हुआ है जो दादियों ने, बाबा ने इनाम दिए। आप ताली तो बजाइए, मेरे लिए नहीं, ये मैं अपनी महिमा के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन है भी ये चीज कम नहीं है, 40 वर्ष और अमृत बेला मिस करे है? आप सबको अनुभव सुनाया होगा, जब हम इंडिया कॉलोनी में गए थे भट्टी कराने बहुत पहले, हमारे रमन भाई बैठे हैं वो दिल्ली वाले, हाँ तो ठा रमन भाई, हाँ सब जानते हैं, मोस्टली जानते हैं कि ये इस विशेषता ने मुझे बाबा के बहुत करीब लाया। ये जो गीत है, ये गीत कहां से आए, ये बाबा को याद करके जो पत्र लिख रहा हूं, बाबा से बात कर रहा हूं, रूहरियान तो है। आप पूछेंगे पत्र में मैं क्या लिखूं, तो मैं कहूंगा तू लिखना शुरू कर दो, ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है, जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया मेरे लाडले का आंचल में भर लिया। यही लिखना, यही तो पत्र है, यही प्यार है। बाबा के सारे गीत मेरे बनाए हुए नहीं, सारे वो बाबा से डायरेक्ट रूहरियान है, वो पत्र ही तो है, थोड़ी सी उसको कलात्मक कर दिया है बस। तो आपको कुछ सोचना नहीं है, मेरे बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे प्राण, मेरे सच्चे सहारे, मेरे सच्चे साथी, मेरे सर्वस्व, मेरे प्राणनाथ, प्राणेश्वर, प्रिय बाबा, मेरे सर्व संबंधी, मैं कौन सा संबोधन दूं, सारे शब्द झूठे हैं, सारे प्यार झूठे हैं, इस दिल के कितने टुकड़े हुए, किस दिल से आपको मैं प्यार की दुहाई दूं, लेकिन मेरे बाबा, मेरे सर्वस्व, जो भी हैं आप ही आप मेरे हैं, मैं दिल से कहता हूं बाबा, भले झूठा दिल हो लेकिन मैं दिल की गहराइयों से कहता हूं, एक आप ही आप मेरे सब कुछ है, मैंने देख लिया जग सारा, मेरे लिए बाबा आप ही प्यारे हैं। मैं दिल की गहराइयों से बाबा कहता हूं कि बाबा बस आपका साथ रहे, यही मन में बाबा है हरदम हमारे, तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, मिले सिद्धियां शक्तियां सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, ये सोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब, तुम्हारे बदौलत हम जो बने हैं, तुम्हारे बनाए, कहीं हमको खुद पर गुरूर आ न जाए,
यही मन में बाबा है हरदम हमारे, तेरी याद दिल से नहीं दूर। बाबा से कहे, ये दिल की बात बाबा को कहे और दिल की बात को बाबा के पास प्रकट करे। तो बाबा हमें रोज दो खत लिखते हैं, एक खत तो मिलता है लेटर टू गॉड एंड लेटर ऑफ गॉड, गॉड्स लेटर, गॉड्स लेटर बच्चों के लिए। पहला तो मुरली का है, आज तो पक्का हो गया है कि बाबा हमें चार पेज का खत लिखता है, चार लाइन तो हम कम से कम पत्र का जवाब दें, नहीं तो बाबा भी कहेगा बड़ा बेवफा निकला ये भी, है ना, बड़ी बेवफा है, ये बेवफाई तो नहीं होनी चाहिए, बाबा को प्यार करें। दूसरा बाबा का एक खत और है, वो आप जानते हैं, खुदा का खत, मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय मित्र, सवेरे का समय, अमृत वेला, शुद्ध पवन है, मेरे लाडले जागो, कह करके मैंने तुम्हें जगाया, तुम किसी तरह जाग भी गए, बड़े मेहनत करके, हिम्मत करके उठे, तो आधी नींद में आधी जागरण में, फिर भी आंख आंख करके किसी तरह उठे, बहुत देर तक तो तुम झुटका खाते रहे बैठे बैठे, फिर सोचा चलो उठ जाऊं, उठ गए, मैं सोचा मेरी तरफ देखोगे, मुझे नमस्ते करोगे, लेकिन देखता हूं तुम भूल गए, नमस्ते करना भी रह गया, जल्दीबाजी में चलो योग में जाना है, नहीं तो बहन जी क्या कहेंगी, फलाने क्या कहेंगे उठ गए, फिर मुंह हाथ धो लिया और धो करके आए बैठे, और जब क्लास में बैठते हैं, योग में बैठते हैं, संगठन में बैठे, तो इधर देखा उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, एक देर से आया हूं मैं, अच्छा बैठ गए, फिर बैठे ऊपर, मुझे देखने के बजाय तुम इधर उधर देखते रहे, और देखते देखते थोड़ा झुटका खाया, थोड़ा जागे, थोड़ा ऊपर आने की कोशिश में कई बार मेहनत करते रहे, और मेहनत करते करते जब 45 मिनट बीत गया, तब सफेद लाइट हुई तो तुम्हारी आंख खुल गई। मैंने कहा चलो 45 मिनट बैठा तो मेरी कोशिश में, मेहनत तो किया, इतनी मेहनत तो किया, आज नहीं तो कल और अच्छा मेहनत कर लेगा। फिर देखता हूं कि अब चाय वाय पिया, स्नान उनान किया, अभी फ्रेश हो गया, अब तो मुझे याद करेगा। फिर देखा कि अभी नाश्ते पे बैठा, भूख लगी है, लेकिन नाश्ता तो बाबा की याद में करेगा। देखता हूं कि भोजन करने बैठा, भूख लगी है, अब तो भोग मुझे लगा करके एक बार कहेगा बाबा आ जाओ, बुलाएगा, लेकिन देखता हूं भूख लगी है, जल्दीबाजी में देखा कोई है नहीं और खाना शुरू कर दिया। फिर देखता हूं कि काम पे जाना है उसको, वर्किंग पे जाना है, मैंने कहा जल्दीबाजी में है, चलो अभी नहीं तो ऑफिस में जाके पहुंचेगा, वहां तो मुझे याद करेगा मेरा दोस्त। वहां देखता हूं तो ऑफिस में बिजी हो गया और गपशप में बिजी हो गया। मैं सोचा कि शायद इसको मैं कुछ दूं, एक पर्चा सामने आया तो सोचा पर्चे में भी मैसेज आया, मैं उसमें मेरा पत्र है, मेरा पर्चा है, तो शायद अभी पढ़ करके मुझे याद करेगा, भगवान को याद करेगा, तो भी याद नहीं किया। फोन घंटी बजे तो इसी बहाने याद करे, तो भी याद नहीं किया। फिर देखता हूं थक गया है, अब शाम को वापस आ रहा है, मैं सोचता हूं चलो शाम को घर पे पहुंच जाए तो याद करेगा। घर पे पहुंचा, टांग फैला करके एकदम आराम से टेलीविजन ऑन कर दिया, सोचा कि यार अभी तो टाइम था, अब तो देखो टेलीविजन में बिजी हो गया भाई, ये तो गड़बड़ हो गया अभी। फिर देखता हूं अच्छा चलो दिन भर बीत गया, अब थका मांदा है, सोते वक्त गुड नाइट तो करेगा कम से कम मेरा दोस्त। देखता हूं गुड नाइट करने के बजाय एकदम निराल सो गया और सारी रात शुरू। मैं इस सोच में रहा कि चलो आज बेचारा याद नहीं कर पाया, चलो कल सवेरे याद कर। इस तरह से मैं रोज सवेरे देखता हूं, दिन भर में मैं इसको देखता रहता हूं, ये गलती से भी एक बार देखता ही नहीं। मेरे दोस्त, मेरा एक खत स्वीकार करो, गलती से मैं तुम्हें बराबर देखता हूं, ज्यादा नहीं चाहता हूं, एक बार बीच में सबसे नाक सबसे आंख फेर करके अपना सिर ऊपर करके, बाबा, मेरे बाबा, आप मुझे हमेशा देखते रहते हैं, मैं भी एक बार गलती से तो ऊपर देख लूं, इतने बड़े आकाश में और वो भी परमधाम में, बहुत दूर और विशाल ब्रह्मांड में, वहां भी किस कोने में, वहां पर भी आप किस कोने में कहां पर, और वहां पास में भी जाऊं तो बिंदु कहां है पता कैसे लगेगा। मैं तो बाबा आपके पास नहीं आता हूं, लेकिन बाबा आपको देख रहा हूं कि आप हमको देख रहे हैं। बाबा बाबा आप हमको देखते रहते हैं ना बाबा, मैं एक बार तो आपको देख लूं बाबा। ऐसे एक बार गलती से बाबा को देख तो ले, झांक तो ले उसको। मैं भी बीच बीच में चलता हूं और ऊपर देख लेता हूं। किसी सूरदास से पूछा किसी ने कि भाई तुम मंदिर में क्यों आ गए, तुमको तो दिखाई पड़ता नहीं, तुम यहां क्यों आए? तो बोलता है क्या फर्क पड़ता है, मैं देख नहीं पाता हूं, वो तो मुझे देख लेता है। मैं वहां नहीं पहुंच पाया तो क्या हुआ, वो तो मुझे देखता रहता है। मैं एक बार झांक लेता हूं ये कहने के लिए कि बाबा मैं आपको देख रहा हूं, आप तो मेरे साथ में हैं, आप बराबर देखते हैं, एक बार गलती से मैं भी तो देख लूं बाबा। आप दिखाई नहीं पड़ते तो ये आपकी बात है, आप दिखाई पड़ो तो अच्छी बात है, ना दिखाई पड़ो तो भाई आपकी मर्जी है बाबा, मेरा क्या जाता है। ऐसे बाबा से बात तो करें। मैं यहां से गया नक्की झील तक और इस सोच में पड़ा कि मुझे बाबा को याद करना है, और यहां तक मैं वहां तक जाते हुए ये अनुभव करूंगा कि बाबा यहीं पर मेरे मेरे पीछे, ऐसे बाबा जैसे ऐसे बाबा हाथ किए हैं, ऐसे बाबा मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, ऐसे जैसे सकास दे रहे हैं और मेरी छाया बन करके चल रहे हैं। इसको मैं ये चित्र सामने देखते हुए यहां बाबा मेरे साथ में है, और मैं यहां तक नक्की तक जाऊंगा और मुझे बाबा आज भूलना नहीं है, और ऐसे करके मैं जा रहा हूं और बाबा बाबा कह रहा हूं कि भूल न जाए, बाबा 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 करता रहूं, क्योंकि एक बार भी भूला तो पता नहीं बाबा कहां खिसक जाता है, पता नहीं लगता है। मैं यहां से गेट से जैसे भी गया वहां तक गया तो 25 बार भूल गया, 25 बार ये भूल गया कि बाबा पीछे है, उसको भूल जाऊं, उस चेहरा ही खिसक जाए। मैं बड़ा सोच में पड़ गया, जब मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, बैठा हूं बाबा को याद करने के लिए, तो इंडिया कॉलोनी वाले कैसे याद करेंगे जिनके मत्थे मामला है। मैं सोच में गया, फिर मैं पीछे पड़ गया, पूरे नक्की झील पे गया तो कहता हूं तुम दिखाई दो न दो हम साथ छोड़ेंगे नहीं, कुछ कहो या ना कहो हम साथ छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारे तुम हमारे इतना सा संबंध है, अपना तो जन्मों जन्म का हो गया अनुबंध है, मर्जी है मानो न मानो हम साथ छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारे तुम हमारे हम साथ छोड़ेंगे नहीं, कुछ कहो या ना कहो हम साथ छोड़ेंगे नहीं। ऐसे करके मैं भी माना तुम जैसा हम जैसा तुम जिद्दी पाओगे नहीं, ऐसे करके पूरा गीत लिखा। मैंने उसमें यही लिखा कि बाबा आप भाग के कहां जाएंगे, जाओगे कहां, अभी नहीं तो तभी आओगे तो आओ, यहीं तो आओगे, जाओगे कहां। मैं भी पक्का पढ़ लिया। एक बिंदु कवि हुए हैं, बहुत बिंदु कवि, गोस्वामी बिंदु, उन्होंने बहुत अच्छी, जिसमें उन्होंने लिखा है अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, बड़े पारंपरिक बहुत ढेर सारे उनके भजन चलते हैं। उन्होंने लिखा कि प्रभो अपने दरबार से अब न टालो, गुलामी का इकरार मुझसे लिखा लो। कहते भगवान तुम क्या चाहते हो, अगर हमसे कुछ चाहते हो तो मेरे पास तो गुनाह बहुत हैं, गलतियां बहुत हैं, मैं सब उठा के दे दूं आपको, ले लो जितना चाहिए ले लो, हमारा क्या जाता है। और वो कहते हैं दीना नाथ और अनाथ, दीना नाथ अनाथ को भलो मिलो संयोग, और जो तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। अब तो तुम्हारे दरबार में मैं आ गया हूं, अखाड़े में आ गया हूं, कबड्डी खेलने के लिए अखाड़े में आ गया हूं, सामने आप है मैं भी आया हूं, सुना है आपने बहुतों को तार दिया, इनको तारा उनको तारा, अब मेरी बारी आई, अब आ जाओ मुझे भी तार के दिखाओ। तारोगे तो अच्छा है, तुम्हारा काम ही तारना है, तुम नहीं तारोगे तो बदनामी तुम्हारी होगी, मेरी थोड़ी बदनामी होगी। ऐसे करके जिद कर लेते, करना है तो तुम्हें करना है, करके रहना है तो तुमको रहना है। बाबा से बात करें, बाबा आपसे भी हमारा पाला पड़ा है, हम छोड़ेंगे नहीं। कई कई भाई बहने अखंड योग करते हैं, जैसे कहते बाबा आज हम आपको इतना घंटा याद करके रहेंगे, तो हमको लगता है कि बाबा भी सोच रहा होगा, ये भी एकदम आ गया है, सामने पड़ गया है, है? तो कभी कभी हंसी में भी आती है कि जैसे भैया बाबा को तो आराम से रहने दो, लेकिन बाबा को भी छोड़ते नहीं हो। तो ऐसी लगन होनी चाहिए, दिल की लगन होनी चाहिए। सच बताऊं, बाबा बहुत प्यार करता है। अगर उसका प्यार ना मिलता तो हम यहां आए ना होते। आप ये भूल जाइए कि आप अपने तरकीब से, अपने तिकड़म से या अपनी युक्ति से आप यहां पर आए हैं, ये बाबा की शक्ति से, उसकी योजना से आए हैं, उसकी कृपा से आए हैं। इतनी कृपा हुई कि कृतकृत्य हो गए, प्रभु प्रेम से हमारे प्राण सिक्त हो गए। ऐसी असीम ममता, ये कृपा नहीं तो क्या है? बिन मांगे सब दिया है, ये दया नहीं तो क्या है? जीवन के महोत्सव में कर्म नृत्य हो गए और इतनी कृपा हुई कि कृतकृत्य हो गए। न जप, न दान, भक्ति, ध्यान, ज्ञान भी नहीं, पालू तुम्हें पहचान लू विद्वान भी नहीं, बस प्रेम था जो प्रभु मिलन से तृप्त हो गए। इतनी कृपा हुई कि कृतकृत्य हो गए। परमात्मा मिलेगा था ये स्वप्न से परे, अरे वो सामने है साथ में, कोई कल्पना करे। इतने करीब आए परम मित्र हो गए, इतने करीब आए परम मित्र हो गए, और इतनी कृपा हुई कि कृतकृत्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। बड़ी कृपा हुई है, उसकी कृपा का तो कोई था नहीं। उसने कितनी असीम अनुकंपा की है, मुझे उसके कदम कदम पर जो मदद मिल रही है उसकी आभास आते हैं। अपने जो चार्ट लिखिए और जो डायरियां बनाइए उसमें लिखिए बाबा की मुझे मदद आज क्या क्या मिली। एक दिन हमेशा तो रोज नहीं लिखेंगे ऐसा, चार्ट में लिखिए कि मेरे बाबा आपकी कदम कदम पर मिलने वाली मदद कैसे कहूं, बाबा आज अमृत बेला आपने कैसे जगाया, बाबा आज फलाना काम करते हुए आपने कैसी याद दिलाई, बाबा ये मैं सोच रही थी ये काम तो होने वाला नहीं है, और मेरा तो लक्ष्य था कि फलाने से मिल जाऊं, फलाने भाई से, फलानी बहन से मैं मिलूं, मुझे उम्मीद नहीं थी, बाबा आपने तो सामने लाकर मिला दिया सामने, बाबा मैं सोच रही थी कि इनका क्लास होना चाहिए, उनकी बात होना चाहिए, आपने तो सामने मिला दिया, मैं संकल्प कर रही थी और सामने मिला दिया। ये जो बाबा की कदम कदम पर मदद मिल रही है, इन छोटे छोटे पलों के कदम कदम पर जो बाबा आपको प्यार कर रहा है, जो आपको स्नेह बरसा रहा है, जो आपके ऊपर वरदानों का हाथ रखे है, जो आपके ऊपर दया कर रहा है, जो रहमो करम कर रहा है, जो असीम प्यार कर रहा है, जो अथाह आनंद दे रहा है, अरे वाह, उसका जरा अनुभव करें, उसका एहसास तो करें, उसकी फीलिंग तो करें। तो वो लिखें कि बाबा कभी कभी मन में बड़े तूफान आते हैं, लगता है कि मैं आत्मा, मैं दिया बुझा की बुझा, इतने झोंके आते हैं, इतने झंझावात आते हैं कि लगता है कि मैं गया कि तब गया, मैं मरा कि मरा। इतने में देखता हूं कि आप लंबे लंबे बाबा आप आते हैं और मुझ चिराग को अपने दोनों हाथों का बाहों का सहारा देते हैं, और सहारा देकर के आप मुझे तूफानों से बचा लेते हैं, और मैं फिर से जगमगाने लगता हूं, फिर नाचने लगता हूं, फिर गाने लगता हूं, बाबा वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। तो सारे खत का मजमून यही है कि जो भी मन में आए, ये नहीं कि नहीं लिखें। पत्र भी कई तरह के होता है, एक प्रेम पत्र है, बाहर दुनिया में आवेदन निवेदन पत्र भी लिखते हैं, बाहर की दुनिया में आमंत्रण पत्र निमंत्रण पत्र भी लिखा जाता है, औपचारिक भी पत्र लिखे जाते हैं, अनौपचारिक भी पत्र लिखते हैं, ऑफिशियल भी लेटर लिखते हैं, अनऑफिशियल भी लेटर लिखते हैं, बहुत ढेर सारे पत्र होते हैं। लेकिन हमारा पत्र क्या है? हमारा पत्र जो है वो प्रेम पत्र का भरा पत्र है। उसमें बाबा से आप सब कुछ कर सकते हैं, कंप्लेंट भी कर सकते हैं, बाबा मैं कितनी बार आपको कहा, बाबा आपने हमारा ये काम किया नहीं, तो बाबा कहते मुस्कुराओ मुस्कुराते, हाँ बच्ची कोई बात नहीं, धीरज रखो, हो जाएगा, मैं सुन रहा हूं, इतना जल्दी घबराती क्यों, मैं सब सुनता हूं है। तो वो भी करें, वो भी लिखे, कंप्लेंट लिखे, झगड़ा करना हो तो झगड़ा भी कर। बाबा कहता है कि अगर तुमको झगड़ा करना हो तो अमृत बेले तुम्हारे लिए बैठा हूं, तुम्हारे लिए बैठा हूं, जो करना है करो, लेकिन करो जरूर, जो करना है करो जरूर, मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम्हारा सब सुनने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। तो आज से मेरी 7 बातें नोट करने, जो प्रायः मैं सबको बताया करता हूं, जीवन के बड़े अनुभव हैं। पहला, आपको जो डेली काम करना है, अपने पत्र का जो प्रेम का जो रिस्पांस देना है, वो इन 7 बातों को करके करना है। पहली बात तो ये करना है कि सवेरे उठते ही बाबा को आप प्रेम पूर्ण इतना प्रणाम करें, नमस्ते करें, बाबा गुड मॉर्निंग, और इसको 5 बार करना है, 5 बार आंखें खोलकर सवेरे उठें, उठते ही पहली दृष्टि बाबा पर जाए, और आपकी सहूलियत के लिए कहता हूं कि सामने देखें बाबा को और आंखें खोलो, खोलें अच्छी तरह से, पूरी आंखें खोलकर बाबा को देखें, सामने बाबा का कास्केट लगा दें, बाबा ज्योतिर्बिंदु बाबा को देखें, और इतनी एकाग्रता के साथ देखें कि आंखें खोलकर, खुली आंखों से, विस्फारित नेत्रों से, कि आंखें खुली की खुली रहें। ये सबसे सुहाने हैं पल जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाये हुए हैं, जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए है, गगन झुक गया वक्त भी ठहरा ठहरा, ये आंखें खुली की खुली रह गई हैं, बाबा को देखें, और ये पहला बाबा को बड़े प्रेम से बाबा को प्रणाम कर ले। ये प्रेम आपका इतना होना चाहिए, बहुत भाई बहनों को नींद की शिकायत होती है, आंखें खुली रखे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक भी अगर आपने आंखें खोली ऐसी, इसको विस्फारित नेत्र कहते हैं, इसको निर्निमेश दृष्टि कहते हैं, जो आंखें बिल्कुल पलक झपके नहीं, आप देखेंगे अगर आपने 3 से 5 मिनट तक भी आंखें खोलकर बाबा को अच्छी तरह देखा, भले आंख में पानी आ जाए, थोड़ा सा हट है, लेकिन शुरुआत कर लिया तो आप देखेंगे घंटे घंटे तक की आपकी नींद खत्म हो जाएगी, शुरू के 5 मिनट भी आपने देखे। तो ये पहली दृष्टि, पहला प्यार, पहला प्यार किसके साथ, किसके साथ, बाबा के साथ। इधर उधर कोई देखे नहीं कि कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, ऐसा नहीं है, वो सीधा बाबा को देखें, बाबा के प्रेम में डूब जाए। दूसरी बात नोट कर लें, ये अनुभव करें कि वतन में मैं रात को गया और बाबा के पास गया, इतने में बाबा ने मुझे तिलक दिया, ताज दिया, तख्त दिया और मुझे सजा दिया, और मैंने सामान ले लिया, और बाबा ने कहा बच्चे आज तुम मेरे काम के लिए धरती पर जाओ, आज अपने काम से नहीं, तुम्हारा जीवन खत्म, अब तुमको एक नया जीवन देता हूं, और बाबा को संकल्प लेकर के अवतार ले रहा हूं, तो उसी समय सामान ले लें कि मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, उसके साथ जोड़ें जरूर। बहुत सारे भाई बहने मैं शिव शक्ति हूं, मुंह में तो रहता है मैं शिव शक्ति हूं, लेकिन लगता है शक्ति ही नहीं, तो यहां होना चाहिए शिव शक्ति हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं महान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। ऐसे कोई भी समान ले लें और उस समान को 5 बार मैं शिव शक्ति हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं क्या नहीं कर सकती हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मेरा अवतार हुआ है, मैं शिव शक्ति हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। ऐसे करके संकल्प पावरफुल ले ले, और ये समान आपको बहुत मदद करेगा दिन भर। तो दूसरी बात ये ली गया, हर दिन एक समान के साथ, दिन भर के लिए एक समान, और सारा दिन उसमें रहिए। दूसरी बात ये पक्का कर लें, समान ले लें। तीसरी बात, अमृत वेला आज से फाइनल करें कि यदि आपको चार्ट भी लिखना है तो बहुत सारे लोगों का चार्ट या बहुत सारे लोगों को ये पत्र बाबा जो लिखते हैं इसलिए छूटता है कि रोज रोज वही लिखते हैं, आज भी अमृत बेला मिस हो गया, आज भी ये हो गया, तो वही लिखते लिखते थक जाते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन लिखना ही है, तो स्वमान के साथ आपके अंदर शक्ति हो जाएगी। अमृत वेला जब आप बैठें तो एक शक्तिशाली योग कर लें, और आज से संकल्प करें इंडिया कॉलोनी वाले जो सब हैं, आप सब कम से कम इतने भाई बहने कि संगम युग में बाबा से हमारा यही प्यार है कि मैं कुछ और नहीं कर सकती हूं, लेकिन अमृत बेला जो बाबा ने अपॉइंटमेंट दिया है उस समय बाबा के साथ बैठकर मुझे अमृत बेला शक्तिशाली रूप से बाबा के प्यार में समा जाना है, प्रेम के आंसू आ जाए, प्रेम के आंसू आ जाए, ऐसे बाबा को प्यार करना है। योग में ऊपर जाओ न जाओ छोड़ दो, बाबा को पास में बुला लो, सामने देखो, चित्रों के आगे बैठ जाओ, बाबा के गीत सुनो और सामने देखो, लेकिन पक्का ठान लो कि मुझे नींद नहीं करना है। और मैं आपको बताऊं, हमारी इंदिरा दीदी यहां बैठती है जहां पर मैं बैठा हूं, अमृत बेला दीदी योग कराती है और मैं भी यहीं बैठ लेता हूं अमृत बेले जब यहां रहता हूं तो, और बैठ के मैं बताऊं आपने 45 मिनट में 40 मिनट भी मैं सफल करने के पूरे उसमें रहता हूं, साक्षात्कार मूर्त बन के बैठता हूं। आपको अनुभव हुआ होगा, कितने भाई बहनों का सुना भी होगा कि मैं जब बैठता हूं तो पूरे पौने घंटे तक पलक इतना पलक भी नहीं झपकता है। इसको निर्निमेश दृष्टि कहते हैं, इतना साध लिया है, एकाग्रता संपूर्ण। जितनी हमारी शरीर की एकाग्रता होती है, इंद्रियों की एकाग्रता होती है, उतनी मन की एकाग्रता बढ़ जाती है। और अमृत वेला इतना एक्सलेंट होता है कि मैं सारी अपनी सफलता का श्रेय शक्तिशाली अमृत वेला करता देता हूं। और इसीलिए अमृत वेला अगर मैं कभी तो मिस करता ही नहीं और मिस करने की उसमें रहता भी नहीं, और अमृत वेला लगातार करता हूं, इसलिए अमृत वेला तो मैं कितना भी दिन भर जागा रहूं अमृत वेला मैं उठ ही जाता हूं, ये बाबा की देन है। तो एक है साधे सब सधे, अमृत वेला शक्तिशाली बना लें आप। इसका मतलब ये नहीं कि अमृत बेला योग करके आप दिन भर सोए रहो और आपकी दिनचर्या अच्छी हो जाए, वो भी ठीक नहीं, लेकिन अगर शक्तिशाली अमृत बेला वेल बिगन हाफ डन, अगर आपने दिनचर्या का आरंभ शुभारंभ अच्छी तरह से कर लिया, बाबा से शक्ति ले ली, तो दिन भर माया समझ जाती है कि इन्होंने सवेरे जो जन्मे जय यज्ञ किया था अब इनका यज्ञ तो निर्विघ्न हो गया, इसलिए सवेरे सवेरे माया भी हमारे पीछे पड़ती है। सवेरे सवेरे माया सबसे ज्यादा विघ्न नींद के रूप में क्यों डालती है, क्योंकि जानती है कि अगर इनका सवेरे अमृत बेला अच्छा हो गया तो दिन भर मेरी दाल गलेगी नहीं, तो दाल गलाने के लिए सवेरे सवेरे सबसे ज्यादा अटैक करती है। और सवेरे अगर आप चैतन्य रूप से बैठ गए तो आप पूरा समझे अजय हो गए, दिग्विजयी हो गए, अमर हो गए, ठीक है, पक्का करेंगे ना, पक्का करेंगे, हाथ उठाएं, पक्का पक्का करेंगे, एक बार ताली बजा के अपना अभिनंदन कर लीजिए। बहुत अच्छा, आपके इस शुभ संकल्प के साथ हम सब मधुबन निवासी भी आपके साथ हैं, और हमारी आदरणीय दादी जानकी जी का तो बहुत बड़ा संकल्प कि दादी कहीं भी होती थी, बहुत दिनों तक मैं दुबई में था तो देखता हूं कि हम 25 किलोमीटर से आए, जब तक मैं बैठूं 4 बजे दादी आके आती है और दादी बैठ जाती थी, मैं दादी के बाद ही एक कुछ सेकंड देरी हो जाती थी, लेकिन दादियों ने सिखाया, इन सब महान आत्माओं ने सिखाया। आज भी देखता हूं नीचे शांति वन में ब्रजमोहन भाई इतनी उम्र के होते हुए ब्रह्मा कुमारी में सबसे बड़े मुख्य भाई सामने बैठ जाते हैं, कितना कारोबार है इनका, लेकिन ये संकल्प बाबा का दादी का आप पूरा करेंगे। तीसरी बात बताइए, चौथी बात मुरली का मंथन चिंतन अवगाहन वर्णन इनका, और जितना देखें मुरली ही हमारे जीवन की बागडोर, जितने मुरली को आप मथन करेंगे, मुरली से अपना चार्ट बनाएंगे, मुरली के ऊपर अपने दिनचर्या बनाएंगे, उतनी ही आपको शक्ति मिलेगी। तो मुरली हमारे लिए जीवन की बागडोर है, चौथी बात। पांचवी बात है कर्मयोग, स्वदर्शन चक्र फिराते रहें, आज भी बाबा ने कहा स्मृति से जितना भी स्मृति करते रहेंगे कि आप क्या थे, पूज्य राव थे, रंग बन गए, फिर बाबा हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, बाबा आपको चैतन्य कर रहे हैं, तो आप मुरली को खूब मथन कीजिए। मैं समझता हूं कि मुरली ही हमारे जीवन की बागडोर पक्का कर ले। पांचवी बात, कर्म योग करते जाएं, कर्म योग में चक्कर लगाना। कर्म योग में पांचों स्वरूपों का अभ्यास एक मिनट के लिए मैं करा देता हूं आपको। और छठी बात है कि चार्ट लिखना और बाबा को पत्र लिखना, ये पक्का छठी बात कर लें। चार्ट जरूर लिखें, पत्र लिखना और चार्ट लिखना, अमृत बेला और मुरली, ये सब जो मैं कह रहा हूं इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इनमें से कोई भी एक भी चीज मिस ना हो। और बाबा के पत्र में भी ये लिख सकते हैं कि पत्र में, बाबा मैं सवेरे उठी, अमृत बेला बना बड़ा अच्छा हुआ, मुरली कितना अटेंशन रखा, सोमान में कितना रही, आज बाबा मैं चार्ट भी लिखी, ये सब चीज पूरा लिखें। और अंत में सातवीं बात कि रात को सोने से पहले सबसे क्षमा मांग ले, करबद्ध सबसे क्षमा मांग ले, अपने शरीर से क्षमा मांगे, सभी भाई बहनों से क्षमा मांग ले, प्रकृति से क्षमा मांग ले, प्यारी शिवाबा से क्षमा मांग के सबको धन्यवाद दें। सबसे बड़ा धन्यवाद इसको, जरा हाथ करें ऐसे, धन्यवाद, धन्यवाद, बोलिए धन्यवाद, शाबाश, मेरे शरीर बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बैठे रहना और मैं उड़ जाऊं जी, ठीक है, ताली बजा के धन्यवाद दो, बहुत अच्छा जी जी। और दूसरा धन्यवाद सभी भाई बहनों को जिन्होंने बुलाया, जिन्होंने मिलाया, खिलाया, पिलाया, सब भाई बहनों को जिन्होंने आज मुझे जीने का मौका दिया और मुझे इस मुकाम तक लाने में साथी बने, उन सबका दिल से धन्यवाद दे दे, खूब जोरदार ताली से भी। और तीसरा धन्यवाद एक और भूले नहीं, प्रकृति को, ये बाह्य प्रकृति है, बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति दोनों को धन्यवाद दे दें जिस प्रकृति की छाया में हम सब ले रहे हैं। और एक सबसे ज्यादा धन्यवाद दे दें लगे हाथ प्यारे बाबा को, वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा, थैंक यू थैंक यू। आइए एक मिनट के लिए पांचों स्वरूपों का अभ्यास कर लें, कुछ भाई बहने तो जानते हैं और उसके साथ पूरा करते हैं, मेरे साथ बैठ जाए, दोहराइएगा। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा।
बहुत सुंदर, आप सभी ने एंजॉय किया।
कलम कागज जो कॉपी दिया है आप तो पता लग गया क्या लिखना है, और केवल अभी नहीं कभी बैठ करके जरूर लिखिएगा, ठीक है। एक बार इस उमंग के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः पुनः आपका, इतना सेशन को एंजॉयबल किया आपने।